Good evening, listeners. Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market matters. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar. Aarthik khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Roz ki tarah aaj bhi hum aapke liye aarthik, vyaparik aur share bazaar se jude khabrein lekar aaye hain. Pramukh samacharon ka hum vishleshan bhi karenge. आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0184 और 2371-7106. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों को डायल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
वेलकम शरद.
बहुत बहुत धन्यवाद प्राची, धन्यवाद सोनू और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने हेडलाइंस.
Yes, the top headlines today. Benchmark domestic equity indices slip for fifth consecutive week. Sensex and Nifty drop around 1.3%. US stock indices settle at their lowest levels in over 7 months. And global crude oil prices log weekly gains.
घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांक लगभग 1.3% गिरे. उधर अमरीकी शेयर बाजार 7 महीने बाद अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ और इस सप्ताह वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े.
And before we start with the news, an important announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, मैं जानती हूं कि शरद जी से बात करने के लिए आपके पास बहुत सारे सवाल हैं. आप सवाल लेंगे, मगर उससे पहले आइए जानें कि सप्ताह के दरमियान हमारे प्रमुख सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी और रुपए के कमजोर होने के कारण बाजार में इस हफ्ते बिकवाली का दबाव रहा. सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1.27% गिरकर 73,583 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 1.28% गिरकर 22,820 पर बंद हुआ. बीएसई के व्यापक बाजार की अगर बात करें तो मिड कैप सूचकांक में 1.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टर्स की बात करें अगर श्रोताओं, तो आईटी और फार्मा को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, रक्षा, रियल स्टेट, ऊर्जा और धातु क्षेत्र साप्ताहिक आधार पर सबसे अधिक नुकसान झेलने वाले क्षेत्र बनकर उभरे. विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 110 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94 रुपए 81 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ.
And now the first caller of the day has joined us from Bhilai. Ravi Narayan is with us. Warm welcome. Please ask your question. I think, Ravi ji, can you hear us?
लगता है हमारी लाइन रवीश जी से या टूट गई है. कोई बात नहीं, अब अगले कॉलर को लेते हैं. शिमला से हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं. जी राकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
जी नमस्कार. और मेरा एक तो सवाल है कि जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शेयर मार्केट से कैसे जुड़ सकते हैं, मेरा ये प्रश्न है.
राकेश जी, बहुत अच्छा सवाल है. और ये देखते हुए सोनू और प्राची के भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो बहुत ही आपने, ऐसा लग रहा है कि आपने सारे ग्रामीण वासियों की तरफ से सवाल पूछा है. देखिए, पहली बात तो राकेश जी, शेयर मार्केट कोई भेदभाव नहीं करती है कि ग्रामीण क्षेत्र से आप आ रहे हैं या आप शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं. पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, तो आपको कोई भी ये ऐसी भावना, हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो हम शेयर मार्केट से हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें या हम क्यों नहीं करें. आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. और मैं आपको राकेश ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो अगर आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है राकेश, तो आपका कोई भी क्षेत्र हो इससे फर्क नहीं पड़ता है. तो एक डीमैट अकाउंट खोलिए राकेश. पहले डीमैट अकाउंट आपके, ये भी ऑनलाइन खुलता है, जो शहर में ब्रोकर्स हैं बड़े बड़े, यहाँ हम नाम नहीं लेते, उन ब्रोकिंग हाउसेस के साथ आप एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है. आपके बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर दिया जाता है, आप उसमें फिर पैसा डालते हैं और फिर उस हिसाब से. पर ये सब तो प्रक्रिया हो गई. जो ज्यादा जरूरी बात यह है, ये मैं मान रहा हूं कि आपके खून पसीने की कमाई है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. तो शेयर मार्केट में देखिए, आपको अगर एक तालाब में छलांग लगानी है तो पहले आपको तैरना सीखना पड़ेगा. तो अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं राकेश, तो आपको पहले शेयर मार्केट के जो गुर हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे. वो आप कुछ ऑनलाइन सीख सकते हैं, मैं ये उम्मीद मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं, और आजकल तो ग्रामीण इलाकों में दूर दूर तक इंटरनेट है, तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, एक टेलीफोन स्क्रीन या आपके पास कोई छोटा टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी है आपके पास, उसमें आप थोड़ी रिसर्च करिए. तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आप वो रिसर्च कर चुके हैं, तब मैंने ये प्रक्रिया बताई. तो अगर आपने ये नहीं करी है, तो फिर मैं आपको एक कदम पीछे ले जाऊंगा. पहले आप रिसर्च करिए, और अगर आपके पास ये रिसर्च नहीं है या आप इसके लिए समय नहीं है, नहीं करना चाहते, तो फिर मैं आपको राकेश ये सलाह दूंगा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में, उनके निगरानी में आप करें, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए. म्यूचुअल फंड्स उन्हीं लोगों के लिए बनाए जिनके पास समय नहीं है या जिनके पास कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है. और ये सब राकेश ऑनलाइन होता है. काश हम आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक छोड़ के भी आ सकते हैं, क्योंकि समय, कार्यक्रम की समय सीमा लिमिटेड होती है, और भी पूछने वाले लाइन में है. मैं उम्मीद करता हूं मैंने एक भूमिका बांध दी है, और अगली बार आपको हम ट्रेडिंग करते पाएंगे या इन्वेस्ट करते पाएंगे.
एंड मे बी दे कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल सिप, विद अ स्मॉल अमाउंट, टू रियली गेट फेमिलियराइज्ड विद द प्रोसेस.
हाँ बिल्कुल सोनू, जैसा मैंने कहा, यू नो व्हेन ही हैज टू लर्न स्विमिंग टू बी टेकिंग अ डिप इन द, तो पहले आप हाथ या पैर डाल के देखिए पानी ठंडा है कि गर्म है. बिल्कुल आपने ऐसी बात करी, बिल्कुल छोटा इन्वेस्ट करके करें. पर उससे पहले मेरे ख्याल ये प्रक्रिया भी जानना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की, शायद ही वो भी जानना चाहते हैं, बिकॉज ये कहां से, कितना ऑलरेडी होमवर्क कर चुके हैं इसका अभी अंदाजा नहीं लग पाया. तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल ABCD से शुरू किया है, और शायद आप उससे ज्यादा सीख गए हो, तो हम उससे अगली बार पूछेगा, हम उसको और आगे लेकर जाएंगे. जी
बिल्कुल, बाजार के बारे में निरंतर पढ़ते रहना भी बहुत जरूरी है. लिए चलते हैं जयपुर. जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
हाँ ठीक है, धन्यवाद. अच्छा सर, जैसे मैं IT फर्म में और मेटल में SIP के जरिए हर एक महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अब इतना बता दें कि Nifty 100 में रखूं या Nifty 250 तक भी जा सकता हूँ.
अच्छा,
इसी में कंफ्यूज है.
चलिए देखिए, जब आप निफ्टी 100 की बात करते हैं, वैसे तो हम यहाँ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज की बात नहीं कर पाते, क्योंकि आप चलिए निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जितना ब्रॉड बेस्ड आपका पोर्टफोलियो होगा, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके बताता हूँ, जितना ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो होगा आप उतना रिस्क को स्प्रेड करते हैं. पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जितेंद्र कि आप थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, आप एक साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ SIP मेथड से शायद निवेश कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है. और आप निफ्टी 100 का भी रख सकते हैं. इस समय तो मार्केट थोड़ी सी पिटी हुई है, मैं अगर हम अपनी भाषा में जिस तरीके से बात करते हैं, मार्केट इस समय डाउन है, मार्केट बहुत ही अनिश्चितता के एक एक माहौल में आ गई है। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं सोनू और प्राची, आपकी इजाजत से फिर बोलना चाहूंगा, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करती है, मार्केट बुरी खबर को भी पचा जाती है, पर एक चीज मार्केट जो नहीं पचा पाती है वो अनिश्चितता है। वो इस समय मार्केट में इतनी ज्यादा फैली हुई है जिसकी वजह से आपको मार्केट लगातार कभी
नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स
आई थिंक दिस इज स्प्रेड जस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए जितेंद्र, थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखने का समय है। कोई भी आप निफ्टी 100 लें या निफ्टी 300 लें या खाली निफ्टी पे लें, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा संभल के चलें, हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा कर और लंबे वक्त का नजरिया रखें, ये भी मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा।
एंड फ्रॉम जयपुर नाउ वी गो अक्रॉस टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम वेयर अविनाश इज द नेक्स्ट कॉलर। वार्म वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अविनाश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तिरी बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेरे संपर्क में ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे कि मैं कैसे जुड़ पाऊँ या फिर इसका नियम क्या क्या है, तो इसके लिए मुझे हेल्पलाइन का कोई नंबर मिल सकता है कि जिससे मैं जानकारी प्राप्त कर सकूँ।
चलिए अविनाश, पहली बात तो मैं हमारे दोनों माननीय एंकर्स की इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा, खाली त्रिपुरा कहना ही काफी था, नॉर्थ ईस्ट कहना की जरूरत भी नहीं थी। आप त्रिपुरा कहते हैं तो इतनी मशहूर जगह है कि उसमें नॉर्थ ईस्ट अपने आप आ जाता है। देखिए, अभी आपसे पहले एक कॉलर और आए थे, शायद राकेश थे उनका नाम शिमला से, उनका भी कुछ इसी प्रकार का सवाल था। तो अविनाश, मैं कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट की जो जानकारी है वो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। आप गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ABCD से बताते हैं। इसके लिए आपको त्रिपुरा में किसी व्यक्ति के पास जाने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। वो जमाना चला गया जब हम व्यक्ति के पास जाते थे, क्लासेस होती थी। मुझे याद है बहुत साल पहले स्टॉक मार्केट की क्लासेस चल रही हैं, वहां 10-15 लोग बिल्कुल स्कूल की तरह से बैठे हुए हैं, उनको बताया जा रहा है ये निफ्टी होती है, सेंसेक्स होती है, ये ऐसे ट्रेडिंग की जाती है, ये ऊपर जाती है, नीचे जाती है।
और सबसे बड़ी बात, हम लोग भी तो इसी के लिए है कि हम लोग भी तो साझा करते हैं।
और मार्केट मंत्र अगर आप लगातार सुनेंगे त्रिपुरा से, तो मुझे लगता है लगातार जब आप सुनते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। पर ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप बिल्कुल निराश ना हो कि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे। पहली बात तो आप इतनी दूर नहीं है, आप बहुत नजदीक हैं, और अब तो आप और नजदीक आ गए मार्केट मंत्रा में जुड़ के। तो आप ऑनलाइन इसको सर्च करिए, रिसर्च करिए, मार्केट मंत्रा को सुनते रहिए। आप देखिए, कुछ हफ्ते मार्केट मंत्रा सुनने के बाद आप अपने आप को स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट समझने लगेंगे। आप तो ट्रेडिंग की बात करते हैं जी।
बिल्कुल शरद, हम आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ NR प्रसाद जुड़ रहे हैं आपका कार्यक्रम में। अभिनंदन महोदय, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। शरद जी, गुड इवनिंग टू यू।
गुड इवनिंग।
टू क्वेश्चन सर। इन द फाइनेंस बिल आई थिंक देयर इज अ रिडक्शन इन द बायबैक, and what is the extent of reduction and how the capital gains gets affected? That is my first question. My second question is, MOD, Ministry of Defense has announced that 2.38 lakh crore will be the next purchase in the coming financial year.
Yeah.
I would like to know what is the bifurcation between the domestic procurement and the imports. Because I have shortlisted the defense companies of Indian registering so that I can buy more of those from this if this gets allocation. Thank you. These are my two questions.
Okay. Mr. Prasad, you asked on the capital gains on the buyback. You know, the main amendment which has been done in the budget in the finance bill is that the promoters who were running away with the buyback, they were paying lesser taxes. Now the promoters will have to pay higher taxes. So that's the main thing. I think also there is a differentiation between capital gains and dividends in terms of the buyback provisions. So I think the amendment basically impacts the promoters. It doesn't necessarily impact you. That's my first point. Your second question is relating to 2.3 lakhs defense allocation purchase. I think situation vis-a-vis defense is very evolving at this point of time. And you see the geopolitical situation right now is very fragile. Mm. So I'm sure Ministry of Defense and Government of India are going to take a call on the basis of the evolving situation. How much do we need to purchase domestically in terms of aircraft from Hindustan Aeronautics or from other companies? I think it will all depend upon what are the geopolitical developments. I'm sure the defense experts within the government are keeping a very close eye on what's happening around the world, and this might, you know, so whatever is declared now may be subject to changes later. I think it's going to be a balance of imports and local companies. What you can do is choose the companies which have been doing very well, because we don't name companies here. Otherwise, mm-hmm. I've spoken about a few companies, but because we don't name, look for companies whose order books are full. Look for companies in the past who have contributed a lot to the local manufacturing in defense. I think they'll be good bets. Also look at the PE multiples and other bottom lines and top lines. As I said, order books of the companies, and you'll get the answer. I'm afraid we don't name the companies here. So your answer ultimately boils down to being very specific about the companies. Yes.
Our next caller is Shankar from Bhopal. Shankar ji, aapka swagat hai. Sawal puchhe. Shankar ji, aap thoda Shankar ji, I'm sorry, aapki awaz break ho rahi hai. Aap dobara try kariye. Bhilai se Ravi Narayan hai hamare agle caller. Ravi ji,
ji namaste.
Ji,
good evening to both the wonderful ladies. Aur Sharad ji ko bhi namaste.
Namaskar Ravi.
Sir, abhi main kal ek news padh raha tha
ji
ki apne सप्लाई चेन के इशू में जो है अपनी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपने जीडीपी ग्रोथ को जो है लोअर साइड में रिवाइज किया है
जी.
ये गवर्नमेंट का इतना पुख्ता इंतजाम है और उसके बाद भी जो है ये कंजर्वेटिज्म जरा सिनिकल नहीं लगता क्या? पहला. और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, ये दूसरा क्वेश्चन मेरे सिनिसिज्म से रिलेटेड है कि गलवान वैली के 6 साल के बाद जो है अभी हम जो है चाइनीज बिजनेस विजास को जो है उसमें ढिलाई बरत रहे हैं, और सुनते हैं कि कई काफी लीडिंग ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे फिर से डील्स करने लगे हैं. तो ऐसे में फिर हमारे इंडिजनाइजेशन का क्या होगा और फिर से डंपिंग फेस करना पड़ सकता है?
जी, ओके.
चलिए, बहुत अच्छे सवाल है आपने. सप्लाई चेन डिसरप्शंस का, क्रेडिट रेटिंग का, हमारा देखिए इस समय वैश्विक एक इमरजेंसी सिचुएशन है. और आप अगर प्रधानमंत्री जी की भी, प्राची और सोनू, हम स्पीच सुने, उन्होंने लोकसभा में राज्यसभा में बोला, उन्होंने अभी आज जेवर एयरपोर्ट के उस पर जो भाषण दिया, तो उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी परिस्थिति है जो कि भारत के कंट्रोल में नहीं है. दो तीन देश लड़ रहे हैं, बल्कि 12-14 देश इसमें इन्वॉल्व हैं. तो इसमें हम एक लिमिट के बाद हम ज्यादा कुछ इसमें हमें भी सबको मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा. तो सप्लाई चेन डिसरप्शन, आप देखिए एक्सपोर्ट के कितने बंदरगाह पर जहाज खड़े हुए हैं, इंपोर्ट के लिए हमारा कितना सामान वहां पर रुका हुआ है, और तो ऐसे में कुछ भी कह पाना कल को क्या होगा मुश्किल है. तो इसलिए उसको देखिए एक प्रीएम्प्टिव मूव लिया जाता है. रेटिंग कल को फिर दोबारा रिवाइज करके ऊपर भी कर दी जा सकती है, तो उसमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं. आपने दूसरा पूछा चीन से संबंधित. देखिए चीन से हमारा ये सच है कि ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से भी ज्यादा पार कर चुका है. अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने में अभी 2-3 दिन बाकी हैं. तो जरूरतें भारत की हैं, भारत को कंपोनेंट्स आता है, वहां से केमिकल्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, ये सच है. पर भारत का भी मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ चल रहा है. और मैं ये भी मानता हूं, आपने कहा कि 6 साल गलवान वैली के हुए वगैरह, मुझे लगता है कोई परमानेंट दुश्मन, परमानेंट जब आपका व्यवहार अगर सुधार होता है, अगर हम कोशिश करते हैं किसी देश के साथ रिश्तों में सुधार करने के, खासकर अगर वो पड़ोसी है. रवि जी, मुझे एक बात बताइए, आपके पड़ोसी से मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाए, क्या आप सारी उम्र के लिए, आप तो जब वहां से गुजरेंगे तो आपसे नजर ही नहीं मिला पाएंगे, क्या आप कोशिश नहीं करेंगे कि झगड़ा किसी तरह सुलट जाए, कम से कम आंख से आंख तो मिला सके, कम से कम नमस्ते तो बोल सके? तो मुझे लगता है नेबरहुड फर्स्ट भारत की पॉलिसी है. और अगर चीन की तरफ से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है हाथ बढ़ाने में, और हमारी कितनी जरूरतें पूरी हो रही है. तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा.
बहुत खूबसूरती से आपने समझाया.
बिल्कुल सोनू, चलते हैं अब बिहार की तरफ. बिहार से टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्ते सर.
नमस्ते टिंकू जी.
सर, मैं दिल्ली में रहते हैं, बिहार का है, बेगूसराय जिला का. मैं सोचते हैं म्यूचुअल फंड.
जी
पूछिए अपना सवाल.
शायद उनसे संपर्क टूट गया है. म्यूचुअल फंड के बारे में, हाँ म्यूचुअल फंड के बारे में पूछ रहे थे. तो म्यूचुअल फंड्स भी इस समय जो इक्विटी में, मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे, पर एक जनरल बात एक लाइन की कर देते हैं. म्यूचुअल फंड्स जो खासकर इक्विटी वाले हैं वो भी इस समय काफी प्रेशर में है. पर मुझे लगता है कि लंबे वक्त के निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है. मौके के कारण तो अच्छे नहीं है, ये तो हम सब मानेंगे, कहीं युद्ध चल रहा है, परंतु एक निवेशक की दृष्टि से अच्छा मौका है. आप इस लेवल्स पे एंटर कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए, ये दो मंत्र मैं देता हूं कि मार्केट मंत्र के दो मंत्र मेरे हैं ये, कि थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए अपॉर्चुनिटीज आप इसमें ढूंढ सकते हैं।
बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
बोलिए सर। नमस्कार सर।
नमस्कार अमित
सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देखिए सर कि पिछले एक महीने से हम लगातार ऑयल सॉरी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम $120 के हिसाब से, आसपास के $115 के हिसाब से, ठीक है सर, एवरेज पूरे महीने का माने मार्च का। तो सरकार ने उत्पाद शुल्क कम करे हैं और निर्यात शुल्क को बढ़ाए हैं, तो क्या इस कदम से व्यापार घाटा को हम कम कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑयल और गैस के इम्पोर्ट करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना सर, तो बढ़ेगा ही इस महीने। दूसरी चीज सर कि सरकार की कोई नीति है जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होते हैं, ऑयल एंड गैस जो खोज होते हैं उसके नए नए, जैसे तेजपुर हो गया अपना असम में है, बिग बॉय हो गया बम्बई में है, ठीक है सर, इस तरह केजी बेसिन गुजरात में है, तो इसी तरह उसमें कुछ भंडार तेल भंडार की खोज करने के लिए सरकार कोई पॉलिसी ला रही है क्या सर? धन्यवाद सर।
पहले मैं आपके दूसरे वाले का जवाब दे देता हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमित जी का बहुत कंसर्न है कि हम ऑयल नया क्यों नहीं ढूंढ रहे। अमित जी, हमारी बहुत सारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, ONGC है और भी कंपनीज हैं जो निरंतर ऑयल के नए नए कुएं ढूंढती रहती है। आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, बिल्कुल ऐसे में तो और ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है कि हम नए ऑयल के रिसोर्सेस पर। देखिए ये एक भूगोलिक परिस्थिति है, ज्योग्राफिकली ऑयल कहां पर है, जैसे रशिया के पास ज्यादा है, साउथ लैटिन अमेरिका के पास ज्यादा है, खाड़ी देशों में ज्यादा है। भारत की भूगोलिक स्थिति जैसी है, उसमें करीब 13% क्रूड ऑयल हम इंटरनली अपना सोर्स करते हैं और नए कुओं की बकायदा उसकी खोज चल रही है। आपने दूसरा ट्रेड डेफिसिट का पूछा, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा बिल्कुल, अगर डॉलर के दाम बढ़ते हैं 87% हम अपनी क्रूड की जरूरत बाहर से मंगाते हैं, 60% अपना गैस बाहर से मंगाते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट ऊपर नीचे होता है। पर एक अंग्रेजी में कहावत होती है, मैं बोलना चाहूंगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स। तो ये असामान्य असाधारण परिस्थिति है अमित, इसमें बहुत ज्यादा हम आंकड़ों के खेल में, थोड़ा सा हमें उससे ऊपर उठ के देखना पड़ता है कि फिलहाल हम अपनी देश की जरूरतों को, आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भले ही किसी भी भाव हमें लेना पड़ रहा हो, हमें तो लेना पड़ेगा। और शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते सोनू और प्राची कि हमें क्रूड बास्केट, अगर आपको $110 वहां दिख रहा है तो हमारे यहाँ क्रूड बास्केट $160 के करीब आता है, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, और कोई वेनेजुएला से आ रहा है, कोई अल्जीरिया से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, कोई मिडल ईस्ट से आ रहा है, उसको क्रूड बास्केट कहा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे में आपको पेट्रोल मिलते रहना चाहिए अमित, लगातार आपको डीजल मिलते रहना चाहिए, आपके घर में गैस आती रहनी चाहिए, अभी हमें सिर्फ ये चिंता करनी चाहिए, वो चिंता हमें सरकार के ऊपर छोड़ देनी चाहिए।
नेक्स्ट कॉलर इज बीरबल फ्रॉम दिल्ली। बीरबल, आपका स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
नमस्कार मार्केट मंत्री जी।
जी
हेलो सर।
हेलो।
हाँ सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अभी कंपनी से पता किया था, वो कह रहे 1 अप्रैल से जो है ये इंश्योरेंस के रेट बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है क्या जी?
बीरबल, ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं है कि इंश्योरेंस, बाकी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है, इसमें रिस्क देखे जाते हैं, सर्विस कॉस्ट देखी जाती है, बाकी ये सच है कि हर साल, क्योंकि देखिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, उनके यहां जो लोग काम करते हैं हर साल उनका सैलरी अप्रेजल होता है, जिन ऑफिसेज में उनका उनके ऑफिसेज हैं उसका किराया बढ़ता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। तो देखिए एक जो जनरल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, एक नॉर्मल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखा जाता है, वो सर्विस कॉस्ट में आता ही आता है, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको समय समय पर बढ़ता है, पर ऐसा कोई मेजर घोषणा हुई हो बीरबल जी के बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना इंश्योरेंस कराइए। और मुझे लगता है रिस्क कवरेज एक ऐसी चीज है कि कल को जब किसी का नुकसान होता है तो फिर प्रीमियम की बढ़ी हुई कॉस्ट का इतनी अहमियत नहीं रह जाती, हालांकि हम ये साथ में प्रार्थना करते हैं आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो, पर इंश्योरेंस प्रीमियम आप जहां जहां कराते हैं वो कराते रहिए, रिस्क कवरेज बहुत जरूरी होता है।
एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट यूएस मार्केट्स परफॉर्मेंस यस्टरडे। यूएस स्टॉक्स एक्सटेंडेड देयर लॉसेस यस्टरडे। ईच ऑफ द मेजर इंडिसेस क्लोज्ड एट देयर लोएस्ट लेवल्स इन ओवर 7 months एज द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू सप्रेस रिस्क एपेटाइट। द टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स प्लंज्ड ओवर 2.1%। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल मोर देन 1.7%, कन्फर्मिंग इट वॉज इन करेक्शन टेरिटरी, एंड द एस S&P 500 lost nearly 1.7%. All three indices notched their 5th straight weekly decline, marking longest such streak in nearly 4 years. For the week, the Nasdaq slid 3.2%, S&P 500 shed 2.1%, 2.1%, while the Dow dropped 0.9%.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। आज दोपहर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है।
बीते 11 वर्षों में 17 लाख करोड़ रूपये हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए, 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 के बाद से रेलवे में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है।
श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने बताया कि जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और युवाओं के लिए अनेक नए अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपने नागरिकों की शक्ति पर भरोसा करते हुए पूरी ताकत के साथ इस संकट का सामना कर रहा है।
नेक्स्ट कॉलर इज अलोक फ्रॉम महाराष्ट्र। वेलकम अलोक, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन ब्रीफली।
सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर हमारे को किसी ब्रोकर ने डीमैट अकाउंट खुलवाया है और उसके बाद में हम नए यूजर है, उन्होंने हमसे F&O में ट्रेड करवा दिया और वो लॉस हो गया है, तो क्या यूजर ब्रोकर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जो भी ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो कुछ रिटर्न कर सकते हैं वो? और जो हमारा जो मूलधन चला गया F&O में, हम नए यूजर थे, उन्होंने हमको ठीक से बताया नहीं और हम यूज मतलब ट्रांजेक्शन करवा दिया हमसे, तो उसमें हमारा कुछ रिटर्न मिल सकता है क्या ब्रोकर?
देखिए आलोक, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा क्योंकि समय कम है। देखिए, अगर आपकी मर्जी से हुआ है और आपने उसके लिए हामी भरा, बिना मर्जी के तो ब्रोकर कोई नहीं कराएगा। आपने किसी न किसी तरीके से उनको हाँ करी होगी या उन्होंने आपकी हाँ समझी होगी, तभी ये हुआ है। बदकिस्मती से इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उनसे ब्रोकरेज रिफंड करा लें या आपका जो घाटा हुआ है। आइंदा से ध्यान रखें, गड्ढे में कभी गिर जाते हैं तो बोलते हैं देख कर चलो, तो बोलते गिरने देख के तो पैर मुड़ना था मुड़ गया, बोलो मतलब आगे देख के चलो। तो मैं आपको ये संकेत दे रहा था कि आगे से आप ध्यान रखें, कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, पर आप देखिएगा पूरी बातचीत को कि कहीं आपने हाँ करा था तभी उन्होंने कराया होगा, ऐसे तो नहीं कराया होगा, ऐसा मुझे नजर आता है।
नई दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं। सतीश जी, अपना सवाल पूछिए।
साहब को नमस्कार सर।
नमस्कार
सर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन फंड में था सर, वो रिफंड आ गए हैं शेयर, धन्यवाद आपका वो उसमें, लेकिन 1.5 ईयर लग गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो जाते ही क्यों यूनिवर्सिटी एजुकेशन फंड में, अगर जाते हैं तो वो 1.5 ईयर क्यों लेते हैं? और दूसरा सर, मैंने आपकी एडवाइस नहीं मानी कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अभी वो डाउन आ गया, तो मैं तो इन्वेस्टर हूँ।
चलिए दोनों ही बातों में देखिए, पहले तो इनसे एक लड्डू वड्डू कोई रेडियो से सुन लेंगे कि इनका रिफंड आ गया है, बार बार बोलते थे, आपने एडवाइस नहीं मांगी, तो मार्केट मंत्रा की तो एडवाइस मुझे लगता है हमेशा ही माननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आगे से आप मानेंगे और आपको सही एडवाइस यहां पर दी जाती है, आपके हित में दी जाती है। हालांकि एक डिस्क्लेमर शुरू में, सोनू और प्राची जरूर पढ़ते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा।
एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वीकली परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल। द प्राइसेस रोज यस्टरडे एंड नॉच्ड वीकली गेन्स एज ट्रेडर्स रिमेन्ड skeptical about the prospects of a ceasefire in the month-long West Asian conflict. Over the week, West Texas Intermediate WTI crude futures rose over 1%, while Brent crude futures gained 0.3%. Yesterday, WTI surged 5.5% to close at $99.64 per barrel. Brent rallied over 4.2% to settle at $112.57 per barrel.
Sharanji, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर।
थैंक यू सो मच।
Absolutely. So, before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices slip for fifth consecutive week. Sensex and Nifty drop around 1.3%. U.S. stock indices settle at their lowest levels in over 7 months. And global crude oil prices log weekly gains. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 with a brand new edition. Till then, namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Oh, oh, oh.